नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 11 श्लोक संख्या 33 और 34। उपिमानं मोहक्षेत्रं स्वयं निर्वीयतामियत्यात् न कल्पते पुनः सूत्यै उक्तं बीजं च नश्यति एवं कामाशयं चित्तं कामानामतिसेवया विरज्येत यथा राजन् अग्निवत् कामबिन्दुभिः। उपिमानं मोहक्षेत्रं स्वयं निर्वीयतामियात् न कल्पते पुनः सूत्यै उक्तं बीजं च नश्यति एवं कामाशयं चित्तं कामानाम् अतिसेवया विरज्येत यथा राजन् अग्निवत् कामबिन्दुभिः। उपिमानं मोहक्षेत्रं स्वयं निर्वीयतामियात् न कल्पते पुनः सूत्यै उक्तं बीजं च नश्यति एवं कामाशयं चित्तं कामानामतिसेवया विरज्येत यथा राजन् अग्निवत् कामबिन्दुभिः। उपिमानम्, इस प्रकार जोतने से मोह, पुनः पुनः क्षेत्रम खेत स्वयं अपने आप निर्वीयतां बंजर यात हो जाता है, न कल्पते उपयुक्त नहीं है, पुनः फिर सूत्यै अगली फसल उगाने के लिए उक्तम बोया गया बीजम बीज च तथा नश्यति नष्ट हो जाता है एवं इस प्रकार काम आशयम कामेच्छाओं से पूर्ण चित्तम अंतःकरण कामानाम वांछित वस्तुओं के अतिसेवया बारंबार भोग के कारण विरज्येत विरक्त हो सकता है। यथा जिस तरह राजन हे राजा अग्निवत अग्नि काम बिंदु भी घी की छोटी छोटी बूंदों से अनुवाद होता परिय शिल्पोपाद जगत गुरु शिल्पोपाद की। हे राजन यदि किसी खेत को बारंबार जोता बोया जाता है तो उसकी उत्पादन शक्ति घट जाती है और जो भी बीज बोए जाते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार घी की एक एक बूंद डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती अपितु घी की धारा से वह बुझ जाएगी, उसी प्रकार विषय वासना में अत्यधिक लिप्त होने पर ऐसी इच्छाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। तात्पर्य यदि कोई अग्नि में निरंतर बूंद बूंद घी छिड़के तो अग्नि नहीं बुझेगी, किंतु यदि ढेर सारा घी एक बार में उड़ेल दिया जाए तो अग्नि संभवतः पूरी तरह बुझ जाए। इसी प्रकार जो अधिक पापी हैं और निम्न जाति में उत्पन्न हैं उन्हें जी भर कर पाप करने दिया जाता है, क्योंकि संभव है कि वे इन कार्यों से उबकर उन्हें शुद्ध बनने का अवसर पा सकें। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदं। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत्पादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जन सहतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौरत्वसे नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रानी की ये राधा रानी की माला रखी है पर कुछ भक्त इशारा करें तुम डाल दो तुम डाल दो तुम डाल दो पर किसी की हिम्मत नहीं पड़े, हम अपने आप डालें कोई बात। राधा रानी की भाई ब्रजवासी ऐसे होते हैं ना, कभी आप देखो बांके बिहारी मंदिर जाएंगे ब्रजवासी माला लेके जाएंगे और के जय हो बांके बिहारी की जब अपने गले में डालेंगे वो तो वही भैया राधा रानी की इतनी बढ़िया माला ऐसी रखी है क्यों रखी रहेगी, गले में डालेंगे अपने में मत कोई डालो, ये वैष्णवता होती है भाई है? वो इसको इशारा कर रहा वो इसको इशारा कर रहा तेरा कर्तव्य है ना, तो क्लास को देखने वाला व्यक्ति भाई चलो मैं कोई बात नहीं और भी कोई भक्त होगा क्या क्या क्या, क्या होता उसका बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हम ब्रजवासी कहने में चूकते नहीं है श्री राधे। राधा रानी महाराज हमको लाल चाहिए गया भाई तो बहुत सुंदर यहाँ प्रसंग चल रहा है पूर्ण समाज चतुर्वर्ण और इसमें महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर नर जी उत्तर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि पूर्ण समाज चतुर्वर्ण क्या है, जो वर्ण आश्रम के नियमों के पालन करने से मानव जीवन में कैसे पूर्णता आती है वो नर जी बता रहे हैं। नारद जी कहते हैं, राजन यदि किसी खेत को बारंबार जोता बोया जाता है तो उसकी उत्पादन शक्ति घट जाती है और जो भी बीज बोए जाते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार घी की एक एक बूंद डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, अब तू घी की धारा से वह बुझ जाएगी, उसी प्रकार विषय वासना में अत्यधिक लिप्त होने पर ऐसी इच्छाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। तो ये बहुत सुंदर नारद जी वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले श्लोक बताया है कि यदि कोई अपनी प्रकृतिजन्य भौतिक स्थिति के अनुसार, जो प्रकृतिजन उसकी भौतिक स्थिति है उसके अनुसार अपना वृत्ति परक कार्य करता है तथा धीरे धीरे इन कार्यों को छोड़ देता है तो उसे निष्काम अवस्था प्राप्त हो जाती है। नारद जी का कहने का मतलब है कि अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म का पालन करते करते पूर्ण सिद्धि किसमें है, निष्कामता में। जब तक निष्कामता नहीं आएगी तब तक हमारी भक्ति फलीभूत नहीं होगी। अन्य अभिलाषता शून्यम, जब तक अन्य अभिलाषाओं से शून्य नहीं होंगे तब तक हमारी भक्ति पूर्ण नहीं होगी। भक्ति में रहेंगे, बाकी सारे जो भी है नियम करते रहेंगे, लेकिन निष्कामता जब तक नहीं आएगी तब तक हमारी भक्ति पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री प्रभुपाद जी ने कहा है, जब तक विरक्ति नहीं आएगी, मतलब संसार से जब तक विरक्ति नहीं आएगी तब तक कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं आएगी। तो ये सारे जो वर्ण हैं, आश्रम हैं, इनका पालन नियम है, सभी का उद्देश्य एकमात्र एक है, कृष्ण को प्रसन्न करना। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, फिर क्या है, अहे तु क्या अप्रत्यता यात्मा सुप्रसीदति। यानी कोई भी वर्ण हो, कोई भी आश्रम हो, कोई भी क्यों, सवै पुंसाम, सभी आ गए इसमें, सवै पुंसाम परो धर्मो, सभी का परम धर्म है। कौन सा परम धर्म? जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो, संसिद्धिम हरितोषणम, हमारे कार्य से भगवान प्रसन्न हो, वही सभी धर्मों का, सभी वर्णों का, सभी मनुष्यों का परम धर्म है। तो नारद जी ने इसमें पहले चारों वर्णों का कर्तव्य बताया है। ब्राह्मण का धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, इंद्रिय संयम, ब्राह्मण को पूरी तरह से इंद्रियों को संयमन करना चाहिए, ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण दीक्षा ली हुई है हमने, तो हमारी इंद्रियां कितनी संयमित हैं, स्वयं अपनी हमें परीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के लक्षण हैं इंद्रिय संयम। और क्षत्रिय का लक्षण क्या है, शक्ति और यश, यानी क्षत्रिय खूब शक्तिशाली हो, बलशाली हो और यशस्वी हो, ये क्षत्रिय के लक्षण हैं। नारद जी कह रहे हैं। और वैश्य के लक्षण क्या है? ब्राह्मण तथा क्षत्रियों की सेवा करना, ये वैश्य का धर्म है। अशूद्र का धर्म, शूद्र का धर्म है, इन तीनों जो उच्च श्रेणी है, उच्च वर्ण है शूद्र से, उन तीनों की सेवा करना ये शूद्र का धर्म है। और बीच में नारद जी ने स्त्री धर्म भी बता दिया, बीच में ही वर्णों के बीच में ही नारद जी ने स्त्री धर्म बता दी। स्त्री धर्म क्या है? बोले स्त्री का धर्म है श्रद्धावान और पतिव्रता, स्त्री का धर्म है पतिव्रता श्रद्धावान। क्योंकि भागवत में स्वयं भगवान ने कहा है, भर्तु हो सुशूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो हिमाया तदबंधुनाम च कल्याणी प्रजानाम चानुपोषणम दुशीलो दुर्भवो वृद्धो जड़ो रोगी अधनोपिवा पते स्त्री वृण हातव्यो लोके फिर पात की। नारद जी ने वर्णों, ये चार वर्णों का धर्म बता करके फिर स्त्री धर्म बताया। बोले स्त्री का परम धर्म भर्तो सुशूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो, स्त्री का सबसे परम धर्म है, सबसे परम धर्म भर्तो सुशूषणम अपने पति की सेवा करना। तदबंधु नाम च कल्याणी और निष्कपट भाव से, जो तदबंधु नाम जो पति के संबंधी हैं, पिता भाई माँ इत्यादि, यानी देवर जेठ सासु इत्यादि, तो निष्कपट से निष्कपट भाव से उनकी सेवा करना। और प्रजानाम चानुपोषणम और उनका क्या धर्म है? जो 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 बच्चे हैं उनका पालन पोषण करना, उनका पालन पोषण करना, ये स्त्री का धर्म है। और आगे कहते हैं दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगी अधनोपिवा, यानी स्त्री का पति चाहे कैसा ही हो, उसके प्रारब्ध के अनुसार उसे जैसा भी पति मिला हो उसी में संतुष्ट रहे, चाहे वो दुशील यानी बुरे स्वभाव का हो, दुर्भगो चाहे वो भाग्यहीन ही क्यों न हो, दुर्भगो जड़ो चाहे बिल्कुल मूर्ख ही क्यों न हो, या फिर हमेशा बीमार ही क्यों न रहता हो, अधनोपिवा या फिर बिल्कुल निर्धन गरीब ही क्यों न हो, चाहे जैसा पति हो, स्त्री का सबसे परम धर्म है भर्तुः सुशूषणम अपने पति की सेवा करें। पर इसमें एक शर्त रख दी, पति ही स्त्री बिना हातव्य न लोके स्त्री पातकी, यदि पति पातकी नहीं है, वैश्यागामी नहीं है, तो स्त्री का धर्म है अपने पति की सेवा, जो ऊपर बताई इसी तरह से अपने पति की सेवा करें। यदि पातकी नहीं है, वैश्यागामी नहीं है, तो ये सारे धर्म नारद जी ने बताए, सभी धर्मों के गुणों का वर्णन किया। और फिर बाद में संस्तुति की उन्होंने कि मनुष्य को अपनी जाति या पूर्वजों के व्यवसाय का पालन करना चाहिए। जो उसकी जाति है उसका क्या व्यवसाय है, ब्राह्मण की जाति क्या व्यवसाय है, क्षत्रिय की जाति का व्यवसाय क्या है, मानी अपनी जाति और व्यवसाय का पालन करना चाहिए, क्या जाति है क्या व्यवसाय है। और सहसा अपने अभ्यस्त व्यवसाय को नहीं त्याग सकता, जिस व्यक्ति का जो 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 व्यवसाय है तुरंत एकदम नहीं त्याग सकता। तो नारद जी कहते हैं कि धीरे धीरे वो व्यक्ति जागृत हो और धीरे धीरे उस व्यवसाय को छोड़ सकता है, कहो जब वो निष्कामता को प्राप्त करना चाहता है, तब निष्कामता को प्राप्त करना चाहता है। तो धीरे धीरे सभी अपने अपने व्यवसाय को छोड़कर, यानी सभी धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, भगवान कहते सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओगे तो अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि महासुचः, फिर मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये नहीं रहेगा कि अरे साहब हमारे धर्म, हमारा तो ये वर्ण था और हमारा ये धर्म था, वो हम धर्म का पालन नहीं कर रहे, या हमारा यानी क्षत्रिय अपने धर्म का पालन जो भी मतलब वर्ण का है अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे, हमें पाप लगेगा। वो कहते नहीं, सर्व पापेभ्यो मोक्षस्यामि। यदि तुम एकमात्र मेरी शरण में आओगे, है ना, शरद कह रहे माम एकम, एकमात्र मेरी शरण में आओगे, तो ऐसा नहीं कि परिवार की शरण में भी है, पत्नी की शरण में है और सबकी शरण में है, देवी देवता तो नहीं। भगवान माम एकम, एकमात्र मेरे शरणागत हो जाओगे, एक बात मेरे हो जाओगे, तो सभी धर्मों के पापों से फिर मुक्त कर दूंगा। महासोच है, इसमें फिर कोई संशय वाली बात है ही नहीं कि हमारा धर्म ये था और हम इस तरह से सब कुछ छोड़े भगवान भक्ति में आ गए तो कैसे। भगवान कहते नहीं, कोई संशय वाली बात नहीं, महासोच। और कहो जब पूरी तरह से हम अपने मन को भगवान के लिए दे दें, क्योंकि भगवान तो मांग रहे हैं लव दे दो हमको। भगवान स्वयं आ क्या मैव मन आधस्तु, भगवान भगवद्गीता के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं मैव मन आधस्तु मई बुद्धि निवेशय निवेशसी मैव अत ऊर्धम न संशय। भगवान कहते हैं अपना मन मुझे दे दो, भगवान मांग रहे हैं अपना मन मुझे दे दो, यानी अपने मन को मुझ में स्थिर कर दो। तो मई बुद्धि निवेश, सारी बुद्धि अपनी मुझ में लगाओ। केवल दो बातें करने से क्या होगा, निवेशसी मैव, भगवान कहते फिर ऐसा करोगे केवल दो बातें करने से ही आप मुझ में ही निवास करोगे, निवेशसी मैव। और गारंटी भी ले रहे, अत ऊर्धम न संशय, गारंटी भी ले ली, इसमें बिल्कुल संशय है ही नहीं, निसंदेह तुम मुझ में ही वास करोगे। तो सबसे पहला खेल जो है साधक का प्रगति के लिए वो मन का ही खेल है, मन का खेल है। और भगवान से मन को मांग रहे हैं, मन मुझे दे दो बस, फिर निश्चिंत हो जाओ। फिर देखें ये मन इतना जो इतना इतना जो बदमाश है ना, ये भागता रहता है, मैं देखूंगा इसे, फिर बस मुझे दे दो, फिर मैं फिर देखूंगा इसको, फिर सारी जिम्मेवारी मेरी है। अनन्या चिंतन तो मां ये जना पर पास थे नित्याभ्युक्त, फिर क्या है योगक्षेम भाम्यम। भगवान कहते हैं कि अनन्या चिंतन तो माम ये जना पर पास थे तेषाम नित्याभ्युक्ता नाम योगक्षेम भाम्यम। जो व्यक्ति अनन्य भाव से, अनन्य मतलब और अन्य कोई नहीं, अनन्य भाव से जो मेरी उपासना करता है और किसी की उपासना नहीं, तो भगवान गारंटी ले रहे हैं योगक्षेमं भाम्यं तेषां, उन लोगों का, किन का, जो अनन्य भाव से पूरी तरह से अनन्य भाव से जो मुझ पर अर्पित हैं, मेरी भक्ति सेवा करते हैं, तो उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। देख उनका मन कहां जाएगा फिर, तो मन हम भगवान को दे दें। जैसे गोपियों ने भगवान को मन दे दिया पूरा ही, जो भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रह रहे थे, उज्जैन नगरी से विद्या अध्ययन करके जब आए मथुरा में रहने लगे, बड़े उदास रहते थे, बहुत उदास, रात्रि भर रोते ही रहते, सारी तकिया भीग जाती आंसुओं के जल से, महादेव की बहुत परेशान, बात क्या है, सारी सुविधा नहीं, खाने पीने की रहने की सारी सुविधाएं, दास दासियां रहने के लिए अच्छे अच्छे महल हैं, 56 प्रकार के भोग हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं, बात क्या है। तो माँ ने पूछना भी चाहा, पर भगवान ने कुछ उन्हें नहीं बताया। तो देवी की माँ ने विचार किया कि बच्चा बड़ा है ना, सयाना है, जब सयाने बालक हो जाते हैं तो सारी बात माता पिता को नहीं बताते, कुछ ऐसी बात होती है जो माँ पिता को नहीं बता सकते, मित्रों को बता देते हैं। तो भगवान के परम मित्र कौन थे, उद्धव जी, है ना। उद्धव जी परमित्थ भगवान के, विष्णुनाम प्रवर मंत्री कृष्ण से दयितः सखा, दयितः मतलब बहुत प्रिय, सबसे प्रिय सखा कौन थे? उद्धव जी थे, कृष्ण से दयितः सखा। तो सबसे प्रिय भगवान के प्रिय सखा थे उद्धव से। उद्धव से कहा माँ देवकी ने कि देखो उद्धव, तुम पूछो तुम्हारे मित्र हैं, क्या बात है, क्यों रोता रहता है, इतना चिंतित क्यों रहता है? तो भगवान से उद्धव जी ने पूछा, तो भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं उद्धव? मेरा मन इसलिए चिंतित रहता है, एक तो मेरे माता पिता बड़े दुखी रहते हैं, गच्छ उद्धम ब्रजम भद्र क्या है सौम्य पितृ ना प्रीत मा वह गोपी नाम मत वियोगाधिम मत संदेश ही निवेशय। उद्धव तुम ब्रज में चले जाओ, क्योंकि मेरे माता पिता बड़े दुखी रहते हैं और उनको थोड़ा, उन्हें थोड़ा सुख प्रदान करो, और फिर गोपी नाम मत वियोगाधिम, गोपियां तो मेरे वियोग से इतनी संतप्त इतनी दुखी रहती हैं, तो मत संदेश ही निवेश या मेरा संदेश सुना करके उनके इस विरह से उन्हें मुक्त करो। क्यों? बोले ता मन मना, ऐसा कुछ उनका मन, गोपियों का मन और उनकी आत्मा, बड़ा सुंदर भगवान ने कहा है इसमें, बहुत सुंदर श्लोक है, ता मन मनस्का मत प्राणा, ता मन मनस्का मत प्राण मदर्थे त्यक्त देह का मामेव दैतम पृष्ठम आत्मानम मनसागतः। भगवान कहते उनका मन हमेशा मेरे ही पास रहता है ना, गोपियों ने अपना मन किसको दे दिया था? भगवान कृष्ण को। उनका मन उनके पास रहता ही नहीं था, तो बोले कि उनका मन हमेशा, उनका मन, उनकी प्राण, उनका जीवन मैं ही हूं, उनका मन मेरे पर ऐसा रहता है और उनका उनका प्राण, उनका जीवन, यहां तक कि उनका सर्वात्मा मैं ही हूं। तो कहने का तात्पर्य कि हम अपने मन को भगवान को दे दें, और मन कैसा? दूषित मन, शुद्ध मन। शुद्ध मन कैसे होगा? जैसा खाएंगे वैसा बनेगा मन। तो सबसे पहले मन को शुद्ध करने का तरीका है कि हम अपना जो आहार है हमारा, युक्ताहार विहारस्य, तो हमारा आहार है उसे हम शुद्ध करें। अब जैसे उदाहरणतः बड़ा सुंदर श्लोक है वो, हेमंते प्रथमे मास नंद ब्रज कुमारिका चेरु भविष्यम भुंजानाम कात्यानी अर्चन व्रतम। जब नंद ब्रज कुमारिका, नंद महाराज की ब्रज की जो कुमारी कन्याएं थी अविवाहिता, उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को अपना बनाने के लिए, पति रूप में प्राप्त करने के लिए, तो उन्होंने व्रत किया। तो व्रत में सबसे पहले उन्होंने अपने खान पान पर विचार किया कि कैसा खान पान होना चाहिए। तो चेरु हविष्यम भुंजानाम, उनका भोजन प्रसाद कैसा था? हविष्यान, हविष्य समझते हैं, हविष्यान क्या होता है? कौन कौन जानते हैं? हाथ उठाइए। हविष्यान एक माता जानती है उधर, और एक उधर बहुत कम लोग जानते हैं। हविष्यान एक ऐसा अन्न होता है दिया भागवत में, कि इस अन्न को खाने से हमारा मन निश्चित रूप से शुद्ध हो जाता है, क्योंकि हम जैसा खाते हैं ना, उसका जो रस बनता है वो हमारे मन पर ही तो आता है ना, उसकी बहुत सारी चीज बनती है, रस बनता है, मल बनता है, क्या क्या बनता है जो हम खाते हैं उसका। तो सबसे पहले यदि हम खाने पर ठीक से कंट्रोल करेंगे, उस पर ठीक ध्यान देंगे खाने पर, तो हमारा मन निश्चित रूप से निर्मल मन होगा, शुद्ध मन होगा। तो इसलिए गोपियों सबसे पहले चेरु हविष्याम भुंजानाम, उन गोपियों ने सबसे पहले अपना खान पान पर ध्यान दिया, कैसा क्या खाती थी, बोले हविष्यान्न खाती। हविष्यान्न क्या होता है मैं बताता हूं, चावल और मूंग की हरी दाल है ना, चावल और मूंग की हरी दाल दोनों को मिला करके और उसको उबालिए, कोई मसाला नहीं होना चाहिए उसमें, थोड़ा नमक डाल सकते हैं, और उसको आप खाने की आदत डालो और उसको खाओ, गारंटी से तुम्हारा मन, गारंटी से मन शुद्ध हो जाएगा। मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं गारंटी, स्वयं सुखदेव गोस्वामी ने कहा है इसमें भागवत में। तो सबसे बड़ा खेल हमारा मन का है, मन की तरंग मार दो फिर हो गया भजन, आदत पूरी सुधार लो फिर हो गया भजन। तो मन की तरंग मारना बहुत जरूरी है। मन की तरंग तभी मार सकेंगे हम इस मन को ठीक से। ऐसा प्रसाद दें, निर्मल प्रसाद दें, अच्छा प्रसाद, जो मर्जी खा रहे हैं वो खा रहे हैं, तो कितना ही प्रयास करो, कितनी खूब भक्ति करो, खूब माला करो, मन तो मन में तो कुछ ना कुछ घूमता ही रहेगा ना। तो भगवान को मन कहां दे सकते हैं? भगवान कहे मई एव मन आधस्तु, अपना मन मुझे दे दो और सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, फिर क्या होगा, निवश्यसी मई, फिर मुझ में ही वास करोगे। साधो हृदयम मह्यम, भगवान के साधु मेरा हृदय बन जाता है फिर। साधवो हृदयम मह्यम, और क्या है श्लोक किसी को याद है? साधु नाम हृदयम तो हम मदन्यत तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। अच्छा, इसमें सबको याद होना चाहिए। भगवान कहते हैं साधु तो मेरा हृदय है। कौन साधु है? जो अपने मन को मुझे दे देता है, मन उसका शुद्ध हो जाता है। तो कहते हैं साधवो हृदयम मह्यम, ऐसा साधु मेरा हृदय है। और साधु साधुनाम हृदयम तू हम, और मैं साधुओं का हृदय हूं। क्यों? क्योंकि मदन्य तेन जानती, वो साधु मेरे अलावा किसी को जानते ही नहीं। मदन्य तेन जानती, मेरे अलावा किसी को जानते ही नहीं। तो भगवान कहते हैं ना हम तेभ्यो मनागपि, भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त, मेरे साधु जिन्होंने अपना मन मुझे दे दिया है, मेरे अलावा किसी को जानते ही नहीं, तो मैं भी उनके अलावा किसी को नहीं जानता। भगवान कह रहे हैं जो 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 भक्त मेरे अलावा किसी को नहीं जानते, तो मैं भी उनके अलावा किसी को नहीं जानता। तो यहां निष्कामता का दिया है कि जब तक निष्कामता नहीं आएगी, चाहे हम अपने चारों वर्णों का ठीक से पालन करें और उनका पालन करके निष्कामता नहीं आई, संसार के विषयों में ही रहे, तो फिर मानव जीवन की पूर्णता है नहीं है। मानव जीवन पूर्णता कब है? जब हम पूर्ण कृष्ण भावना, पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाए, तब मानव जीवन की हमारी पूर्णता है, नहीं तो हमारा जीवन अपूर्ण है। तो हम पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाए, तो इसीलिए हम सभी धर्मों का ठीक से पालन करते हैं, और उनका उद्देश्य भी यही है कि हमें निष्कामता आए और पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाए। तो यहां पर इस श्लोक में दिया है कि जो व्यक्ति यदि संसार के विषयों से छूटना चाहता है, या फिर व्यक्ति को संसार के विषयों से छूटने का उपाय नारद जी बता रहे हैं कि जो ज्यादा उनको भोगेगा, खूब ज्यादा भोगेगा, इसमें कह रहे हैं कि हे राजन, यदि किसी खेत को बारंबार जोता बोया जाए, जिस प्रकार किसी खेत को बार बार जोता जाए, बार बार बोया जाए, जैसे आजकल किसान क्या करते हैं, जो किसान होंगे वो समझते हैं, हम भी किसान के बेटा हैं, तो ये किसान होते हुए क्या करते हैं, पहले तो ये करते हैं कि साल में केवल दो ही फसल लेते थे, साल में केवल दो फसल, और आजकल साल में बहुत ज्यादा पांच छह फसल ले लेते हैं, तो खेती कमजोर हो जाती है। यहां तक नारद जी कहते, स्वयं नारद जी कह रहे हैं, नारद जी का अनुभव है, नारद जी कह रहे हैं, हे राजन, यदि किसी खेत को बारंबार जोता बोया जाता है तो उसकी उत्पादन शक्ति घट जाती है, और यहां तक कि जो भी बीज बोए जाते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार घी की एक एक बूंद डालने से अग्नि कभी बुझती नहीं, और एक बार घी उड़ेल दो, एक बार में सारा पूरा टीन उड़ेल दो उसमें घी, तो क्या होगा, वो अग्नि बुझ जाएगी। तो उसी प्रकार नारद जी कहते हैं कि उसी प्रकार विषय वासना में अत्यधिक लिप्त होने पर ऐसी इच्छाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं, है ना, विषय वासना में पूरी तरह लिप्त हो जाएंगे, ज्यादा लिप्त हो जाएंगे, ज्यादा लिप्त हो जाएंगे, तो फिर हमें बैराग होगा, जैसे कर्दमुनि जब विवाह किया, सुंदर पत्नी थी, हालांकि पहले तपस्यामृत हो गए थे, फिर पत्नी ने इच्छा की तो उनकी प्रसन्नता के लिए बढ़िया कामक विमान तैयार किया अपनी योग शक्ति से, और ऐसा विमान जिसमें बड़े बड़े राजाओं को सुविधा नहीं हो, उससे भी ज़्यादा बढ़िया सुविधा, जहाँ इच्छा हो वहीं जा सकें, सारी भोग सामग्री उसने, कहीं मार्केट में नहीं, उसी में सारे मॉल मार्केट बने हुए थे, कहीं जाना नहीं पड़ता कहीं मार्केट में, यानी सारी सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं, सारी सुविधाएं उसमें तैयार मौजूद थी उस विमान में। तो उन्होंने खूब कई वर्षों तक खूब बढ़िया, खूब विषय भोगे। उन्हें यही नहीं पता लगा, लिखा है भागवत का, दिन कब हो गया, रात कब हो गई, दिन रात का पता उनको नहीं रहता, इतने विषयों में लिप्त हो गए थे। जब इतने लिप्त हो गए तो उन्हें एकदम ज्ञान, अरे अरे ये मानव जीवन को इसलिए थोड़ी है, विषय वासना लगने के लिए, विषयों को भोगने के लिए मानव जीवन नहीं मिला है। उन्हें एकदम फिर होश हुआ और फिर पत्नी से बोल लगे, भाई अब तुम संभालो घर द्वार को, इन कन्याओं को, नौ नौ कन्याएं हो गई इसी बीच में, उनकी नौ नौ कन्याएं हो गई, अब तुम घर बार संभालो, मैं जा रहा हूं बने, बहुत ज्यादा लिप्त हो गया परिवार, मेरी अधोगति होगी फिर। तो अलग उनकी पत्नी उदास हुई थी, उन्होंने याद भी आया, नहीं भगवान भी आएंगे आपके उधर से, अब मैं रुकूंगा कुछ समय के लिए। तो कुछ समय के बाद भगवान आए, उनका नाम था कपिल भगवान। तो कपिल भगवान घर में आ गए, फिर भी उनको प्रणाम कर क्या बोले, बस अब मेरी ऐसी इच्छा है, मैं घर में रह करके बहुत सारी विषयों वासना फंसा हुआ हूं, तो अब मेरी ऐसी इच्छा है, अब मैं वन में जाकर के आपका भजन करूं। तो ठीक है, ओके। भगवान बोले, गच्छ कामम मया तुष्टो, मैं संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जन मृत्युम अमृत्वाय माम भज। भगवान बोले ठीक है, गच्छ कामम मया प्रस्तो, जाओ तुम और मैं संन्यस्त कर्मणा, अपने सारे कर्मों को मुझ में अर्पित कर दो, है ना, सब कर्मों को मुझ में अर्पित कर दो, और फिर जित्वा सुदुर्जन मृत्युम, जो जन्म मृत्यु, बार बार जन्म मृत्यु का जो सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ी बीमारी, उसे जीत लो, जाओ भजन करो, माम भज, मेरा भजन करो। जैसे याति महाराज कितने विषयों में लिप्त हुए, कितने उन्होंने हद कर दी, है ना। जब उनकी पत्नी देवयानी रूठ करके घर चली गई, तो शुक्राचार्य ने उनको साप भी दे दिया कि जाओ तुम्हारे अंडकोश, है ना, तो अब वो बड़े दुखी, और आयु भी उनकी घट गई। तो अब उन्होंने और विषयों को भोगने के लिए और क्या उपाय किया, अपने पुत्रों से आयु मांगी कि भाई जवान रहेंगे तो थोड़ा विषयों को ठीक से भोग सकते हैं वृद्धावस्था में, तो अपने पुत्रों से आयु मांगी विषयों को भोगने के लिए। हालांकि सबने मना कर दिया, पर जो छोटे थे सबसे, क्या नाम था उनका, पुरु, तो पुरु ने उनको दे दी। तो पुत्र की आयु लेकर के तब खूब विषय भोगे उन्हें। जब खूब विषय भोगे तब उन्हें एकदम बैराग हुआ, अरे अरे मैंने तो हद कर दिया। अब वो अपनी पत्नी को बिठाकर प्रवचन सुनाने लगे, बकरा बकरी का, एक बकरा था और ऐसा प्रवचन, आपने भागवत में पढ़ा होगा आपने, तो उनको बैराग हुआ फिर। तो कहने का तात्पर्य है, या नारद जी कहते हैं कि जिस प्रकार खेती को बार बार जोतने से, बोने से उसकी जो उत्पादन शक्ति है वो कम हो जाती है, और अग्नि में बूंद बूंद घी डालने से अग्नि और प्रज्वलित होती है, कम नहीं होती और प्रज्वलित होती है, परंतु जब एक साथ उसे उड़ेल दिया जाए तो बुझ जाती है, उसी प्रकार जो व्यक्ति विषयों की भोगने की हद कर देता है ना, ज्यादा ही अत भोगता है तो उसे एकदम बैराग हो जाता है, और अच्छा बैराग होता है। तो नारद जी यही उपदेश दे रहे हैं कि मनुष्य के लिए किसी न किसी तरह से बैराग होना चाहिए। जब तक हमें संसार से बैराग नहीं होगा तब तक भगवान से अनुराग नहीं होगा। तो ये सारा खेल मन का ही है, और जब मन भगवान में लग जाता है तो संसार की सारी इच्छाएं फिर अपने आप नष्ट हो जाती हैं। जैसे भगवान ने गोपियों से कहा है, न मयावेश ध्याम, ऐसे कुछ श्लोक है, न मयावेश ध्याम, लिखा है कि नहीं, चीजों की याद है, हाँ, न मय आवेश ध्याम काम, न मय आवेश ध्याम काम कामाय कल्पते, भर्जता क्वचिताधान प्रायो बीजाय नेष्यते। ये वह गोपियों से कहा है जब गोपियां व्रत कर रही थीं और निर्वस्त्र यमुना में स्नान कर रही थी, वह उनके कपड़े उतार के ले गए थे, तो भगवान ने शिक्षा भी दी थी और उनसे कहा भी था कि देखो देवियों, जिसका मन या जिस व्यक्ति ने अपना मन मुझे दे दिया है, जिसका मन मुझ में लग गया है, तो उसकी इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर नहीं जाती, नहीं तो इच्छाएं बड़ी बलवती हैं, अपने अपने विषयों को भोगती रहती हैं, दौड़ती रहती हैं, लेकिन भगवान कहते हैं न मयावे ध्याम कामः कामाय कल्पते वर्जता क्वचिताधानः प्रायो बीजाय नेष्यति। भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपना मन मुझे दे दिया है, फिर उसकी इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर नहीं जाती। कब नहीं जाती? जब अपना मन हम भगवान को दे देते हैं। बोले जिस तरह से भुजे हुए चने को या भुजे हुए धान को या भुजे हुए अन्न को आप खेती में बोएं, भुने हुए अन्न को चना को, और उसमें कितना ही पानी लगाओ, कितना ही खाद लगाओ, खूब उसकी देखरेख करो, उसमें अंकुर निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो बोले कि जिस प्रकार, यानी जो व्यक्ति अपने मन को मुझे अर्पित कर देता है, तो उसकी इच्छाएं फिर उसकी फिर इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर नहीं जाती। जैसे जैसे भुने हुए चने को, भुने हुए चने में बीज अंकुरित नहीं होता, उसी प्रकार उसमें फिर काम की इच्छाएं अंकुरित नहीं होती। कब नहीं होती? जब अपने मन को हम भगवान को अर्पित कर दें। ये सभी साधु संतों ने, सभी ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे मन को अपने चरणों में लगा लो, प्रभु ये मन बहुत चंचल है। तो अपने मन को भगवान को सौंपते हैं, भगवान को दे देने का प्रयास करते हैं, पूरी तरह से अपने मन को भगवान को दे देंगे तो निश्चित रूप से हम सभी तरह से सफल हो जाएंगे और इच्छाओं से अन्याविलासता शून्य हो जाएंगे। तो अन्याविलासता शून्य हो जाएंगे तो बस केवल कृष्ण ही हमारे मन में रहेंगे, तो फिर हम कृष्ण के हृदय में वास करेंगे, कृष्ण हमारे हृदय में वास करेंगे, है ना। भगवान ने स्वयं वचन दिया है और हम कृष्ण के अलावा किसी को नहीं जानेंगे, तो कृष्ण भी हमारे अलावा किसी को नहीं जानेंगे।